समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में लाएंगे हम आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या खास है उनके पास। खेल के मैदान की भी हलचल होगी। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जयंती है। परिक्रमा के आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ विनय सक्सेना और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रमोद। प्रमोद नमस्कार।
नमस्कार विनय एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। And as Vinay rightly said, we have a selection of news, our discussion segment, Take Line India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes, but we begin with the news headlines first. Polling underway in 58 constituencies in sixth phase of Lok Sabha elections.
Odisha mein Vidhan Sabha chunav ke teesre charan ke liye vote dale ja rahe hain.
Campaigning continues for seventh and final phase of general elections.
चक्रवात रिमल के कल आधी रात तक बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका।
एंड इन आर्चरी इंडियन वुमेन्स कंपाउंड टीम स्ट्राइक्स गोल्ड व्हाइल मिक्स्ड टीम बैक सिल्वर एट द वर्ल्ड कप स्टेज टू इन साउथ कोरिया। And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we'll talk about World Football Day.
You're so tired, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on.
Regular participation in sport and physical activities provides various social and health benefits. Not only does it have a direct impact on physical fitness, but it also instills healthy lifestyle choices among children and young people, helping them remain active and combat non-communicable diseases.
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए कई अध्ययनों से पता चला है कि शारीरिक व्यायाम सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहित करता है। व्यायाम को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार के साथ साथ अवसाद और चिंता से जूझ रहे लोगों पर सकारात्मक प्रभाव से जोड़ा गया है। खेल उम्र, लिंग या जातीयता की परवाह किए बिना कल्याण में योगदान देता है। इसका आनंद सभी उठाते हैं और इसकी पहुंच बेजोड़ है। खेल विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देने में सहायक रहे हैं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फुटबॉल एक प्रमुख वैश्विक खेल के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखता है। 2024 में दुनिया पेरिस ओलंपिक खेलों के दौरान 25 मई 2024 को आयोजित सभी क्षेत्रीय टीमों को शामिल करने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस मील के पत्थर का सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को संकल्प पारित किया, जिसमें 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया।
That's right, football enthusiasts worldwide will now have an annual celebration dedicated to the world's most beloved sport on the 25th of May. The United Nations General Assembly unanimously adopted a resolution on Tuesday designating 25th May as World Football Day. The chosen date commemorates the 100th anniversary of the first international football tournament where all regions were represented. This historic event took place on the 25th of May 1924 during the Summer Olympic Games in Paris.
और फुटबॉल की बात आई है तो इन नामों को कौन नहीं जानता। जी हम बात कर रहे हैं लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की।
जी एब्सोल्युटली। बोर्न इन रोजारियो अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी वाज बोर्न इन 1987 एंड इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम एंड हिज इलस्ट्रियस करियर प्रूव्स व्हाई। द अर्जेंटीनियन फुटबॉलर हु होल्ड्स अ रिकॉर्ड 8 बैलों डी'ओर अवार्ड्स हैज डिस्प्लेड हिज टैलेंट अर्ली ऑन एंड हैज ऑलवेज बीन डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस। वैसे आपको याद है विनय, हमारे बचपन में एक पेले हुआ करते थे, वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर।
पेले हुआ करते थे, पेले के बाद नाम आया था अर्जेंटीना के मशहूर खिलाड़ी का, कौन
बताइए?
मैराडोना?
एब्सोल्युटली. मैं आपको टेस्ट कर रहा था.
Okay.
मुझे याद था वैसे.
पास हो गया मैं?
पास हो गया. ड्यूरिंग हिज 17 ईयर करियर विद द टीम ही हेल्प्ड देम विद द न्यूमरस टाइटल्स इंक्लूडिंग 10 ला लीगा टाइटल्स, 4 चैंपियंस लीग क्राउन्स एंड 7 कोपा देल रे ट्रॉफीज. ही इज ऑल्सो द ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर इन ला लीगा विद एन इनक्रेडिबल 474 गोल्स टू हिज नेम. He left the Spanish club in 2021 to join French powerhouse Paris Saint-Germain, where he played 2 years before joining Inter Miami in the MLS.
Cristiano Ronaldo.
Unforgettable name, Vinay.
Modern football mein.
Absolutely.
Jo apni peedhi ke mahantam khiladiyon mein se ek hain, 5 Ballon d'Or puraskaron ke vijeta, wo khel ke sheesh goal scorerron mein se bhi ek hain. Manchester United ke saath khelte hue, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड में से रिकॉर्ड बनाए हैं और अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं. 2008 में उन्हें यूनाइटेड चैंपियंस लीग का खिताब जीतने में मदद की और उस वर्ष उन्हें फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया. 2009 में वो रियल मैड्रिड में शामिल हो गए. 2013 में 66 गोल करने के बाद भी उन्होंने वर्ष का दूसरा विश्व खिलाड़ी का पुरस्कार का खिताब जीता. इन दो खिलाड़ियों के अलावा भी प्रमोद बहुत से खिलाड़ी ऐसे अलग अलग देशों के जिनका नाम उतनी सुर्खियों में नहीं आता है, जैसे फ्रांस के प्लैटिनी.
एब्सोल्युटली.
उनको लोग भूल जाते हैं लेकिन फिर भी वो मशहूर खिलाड़ी हैं वर्ल्ड के.
एब्सोल्युटली. द रेजोल्यूशन एक्नॉलेजेस द ग्लोबल रीच ऑफ फुटबॉल एंड इट्स इम्पैक्ट इन वेरियस स्फीयर्स इंक्लूडिंग कॉमर्स, पीस एंड डिप्लोमेसी एंड रिकॉग्नाइजिंग दैट फुटबॉल क्रिएट्स अ स्पेस फॉर कोऑपरेशन. इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेस द फंडामेंटल रोल ऑफ फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन फीफा एंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रीजनल एंड नेशनल सॉकर फेडरेशंस एज वेल एज रेलेवेंट एसोसिएशंस इन प्रमोटिंग द गेम ऑफ फुटबॉल.
यह प्रस्ताव सभी देशों को शांति, विकास और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उपकरण के रूप में फुटबॉल और अन्य खेलों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और ये देशों को फुटबॉल और अन्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है. यह सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विश्व फुटबॉल दिवस मनाने और शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता सहित सभी के लिए फुटबॉल के लाभों का प्रसार करने के लिए आमंत्रित करता है. प्रमोद, 15 जून से यूरोपियन चैंपियनशिप भी शुरू हो रही है तो हमारे दर्शक आनंद लेंगे उसका.
एब्सोल्युटली.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष हमारे लिए.
दैट्स राइट. दिस वर्ल्ड सेलिब्रेट्स द 2568th बुद्ध जयंती. वी ब्रिंग आवर व्यूअर्स टू नोटिस इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट प्लेसेस इन नेपाल एट बुद्धिस्ट फॉलोअर्स लाइक टू विजिट. एज 8.21% ऑफ नेपाल्स पॉपुलेशन कम्प्राइजेस बुद्धिस्ट फॉलोअर्स, बुद्धा स्तूपा, स्वयंभूनाथ स्तूपा फॉलोड बाय नमो बुद्ध मॉनेस्ट्री इज अ मस्ट विजिट रिलीजियस साइट फॉर मिडिल पाथ फॉलोअर्स. वी हैव अ रिपोर्ट.
The Boudha Stupa is the largest in the world and is said to entomb the remains of Kashyap Buddha. Second to Boudha is the Swayambhunath Stupa, located atop a hill in Kathmandu, an ancient sacred complex of stupas and temples built in Lichari period. Namo Buddha is the third popular Buddhist site in Kathmandu Valley, about 40 kilometers away from the heart of the city. It is said that Gautam Buddha took 1,000 births before attaining enlightenment at Bodh Gaya. In one of his past lives at the holy place of Namo Buddhaya, he as a prince was overcome with compassion when he saw a tigress with cubs tormented by starvation. He offered his body to feed her without a moment's hesitation. Here, people come to offer prayer and be inspired by the compassion of Gautam Buddha. Shweta Singh for Parikrama, Kathmandu.
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शीर्ष निकाय स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस स्कोप ने अपनी क्षमता निर्माण की पहल को देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लाते हुए हाल ही में मेघालय के शिलांग में सूचना का अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया.
इस बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया, मेघालय के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एच नांग पलुह, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस स्कोप के निदेशक जनरल अतुल सोबती और मेघालय सरकार, भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस बैठक में 34 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 80 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए. आकाशवाणी से बातचीत बातचीत में हीरालाल समारिया ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यद्यपि आरटीआई एक छोटा अधिनियम है, पर यह शक्तिशाली अधिनियम है। कोप के निदेशक जनरल अतुल सोबती ने बताया कि इस कोप ने शिलांग में इस राष्ट्रीय बैठक का आयोजन इसलिए किया क्योंकि शहर की बढ़ती प्रमुखता के कारण यह स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में कदम उठा रहा है।
In Northeast, in Shillong, basically because we are trying to bring this particular knowledge, awareness about this act across the country, all the geographical regions. It's a very powerful act. What happens, this particular act, from both sides the problem comes, because sometimes it is used for harassing the individuals also, officers also. Second point is, like State Information Commission also mentioned, many of the vertical PAs, they want to evade the replies. Giving the general replies and a common citizen doesn't get the correct reply. In fact, that is the reason we conduct this program, educate the people that we need to provide the information so that our citizen is empowered.
सरकारी प्रतिनिधियों और संकाय के अनूठे मिश्रण के साथ की जा रही इस तरह की इंटरैक्टिव बैठकें स्कोप की क्षमता निर्माण की पहल महत्वपूर्ण योगदान देंगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिलांग से परितोष दीक्षित।
विनय, टुडे इज वोटिंग डे एंड मैं आपकी उंगली में देख रहा हूँ एक निशान है, दैट मींस यू हैव आल्सो बीन अ वेरी कॉन्शियस सिटीजन।
ऑफकोर्स मैं वोट देके आया हूं और उन लोगों से, श्रोताओं से अनुरोध है जो हमें सुन पा रहे हैं कि अगर अपने घरों से नहीं निकले हैं और उनके क्षेत्र में अगर मतदान हो रहा है तो अब शाम भी हो चुकी है, निकलें और वोट दें।
एग्जैक्टली, वेरी ट्रू।
चुके नहीं
बट विद द हीट वेव, यू नो, रियली स्कॉचिंग हीट इन दिल्ली,
इट्स कैन बीट द हीट वेव।
यस,
एंड नाउ आई थिंक व्हेन द वोटिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन बीट द हीट वेव।
वेरी ट्रू। एज वेल एज वी नो, पोलिंग इज अंडरवे इन 58 कंस्टिट्यूएंसीज इन द सिक्स्थ फेज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस एंड विल एंड सून। लेट्स गो ओवर टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू नो द लेटेस्ट अपडेट। वी हैव अर्पिता फ्रॉम ईस्ट दिल्ली। अर्पिता, व्हाट्स द लेटेस्ट अपडेट ऑन द इलेक्शंस इन ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी?
Yes, Pramod, voting is in full swing across all the Lok Sabha constituencies in Delhi, and right now I'm at the Rajkiya Sarvodaya Kanya Vidyalaya in IP Extension area of the Delhi Parliamentary Constituency, and the atmosphere is actually charged with civic enthusiasm. And so far in East Delhi constituency, 44.7% voter turnout has been recorded.
Mm-hmm.
And in the 2019 general election, over 61% voter turnout was registered. And as the evening will bring in cooler temperatures, it is anticipated that voter turnout will increase, potentially surpassing the 2019 record. And in East Delhi, the candidates, the prominent candidates include Bharatiya Janata Party's Harsh Malhotra,
correct,
Kuldeep Kumar from the Aam Aadmi Party, and BSP's Mohammad Waqar Chaudhary. And in 2019, BJP leader Gautam Gambhir won this seat with a substantial margin of over 3 lakh votes.
That's right.
And this time, the Aam Aadmi Party and Congress have formed an alliance aiming to provide a formidable challenge to the BJP, setting the stage for an intensely competitive electoral showdown. Yes, Jamesh.
Very good. What kind of special arrangements are there now that the heat is, as you rightly said, of course, it's going to be 5 o'clock now, so obviously the heat has kind of abated. But what were the arrangements earlier in the day when it was pretty hot? Were there water coolers and, you know, drinking water?
Yes, Pramod. So as we all know that the Met Department has already issued a red alert for Delhi for the extreme heat wave conditions. And keeping that in mind, the Election Commission of India has ensured all kinds of facilities in the polling booth. Along with that, heavy security and paramedical services are also on high alert to ensure smooth voting. The polling center I am present right now here has extensive arrangements including shade, drinking water, coconut and lemon water, ramps for those with disabilities, also wheelchair facilities for seniors, and this polling booth also has crash facilities for children. So it is very interesting to
see
that despite the sweltering heat, the enthusiasm of voters is quite high. We are constantly updating about these polling booths and how people, despite of the extreme and scorching weather, they are coming out in large numbers, and we are also updating about it on the Akashwani social media channels. So yes, it's a heartening vision to see. Yes, Sumo.
Very good. Thank you so much, Arpita, for that wonderful update. थैंक यू सो मच।
और अब चलते हैं हमारी दक्षिणी दिल्ली की संवाददाता पल्लवी के पास, जो हमें अपडेट दे रही हैं कि मतदान दक्षिणी दिल्ली में कैसा चल रहा है।
जी
पल्लवी, क्या अपडेट है? कैसा मतदान चल रहा है दक्षिण दिल्ली के निर्वाचन क्षेत्र में?
जी, मैं अभी दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के जैतू इलाके में हूँ, जो मतदाताओं की संख्या के मामले में राष्ट्रीय राजधानी का चौथा सबसे बड़ा निर्वाचन वाला इलाका है। गर्मी के बावजूद इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तापमान लगभग 42 डिग्री है और यह देखकर खुशी होती है कि लोग चिलचिलाती गर्मी में भी अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ विनय, दिल्ली में अब तक 34.37% मतदान हुआ है और इस सीट पर करीब 35.39% मतदान हुआ है।
पल्लवी, दक्षिणी दिल्ली दिल्ली का बड़ा पॉश इलाका माना जाता है, लोग निकल रहे हैं क्या अपने घरों से बाहर?
जी बिल्कुल,
एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं अभी भी?
जी, जैसे मैंने आपको बताया, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों को, वो गर्मी में भी, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में भी बाहर निकल रहे हैं और अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं।
क्या व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर?
चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए काफी इंतजाम किए हैं, मतदाताओं को अधिकतम सुविधा देने के लिए कई अनूठी पहल की गई है। दिल्ली में बुजुर्ग लोगों के को मतदान केंद्रों में उनके घरों तक मुफ्त यात्रा की पेशकश करने के लिए बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स के साथ साझेदारी की गई है। दिल्ली चुनाव में पहली बार सभी मतदान स्थलों पर बुनियादी मेडिकल किट से लैस पैरामेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है। साथ ही पहली बार प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पूरी तरह से विकलांग व्यक्तियों के जरिए संचालित किया जा रहा है।
धन्यवाद धन्यवाद पल्लवी हमें अपडेट देने के लिए।
जी।
And now we'll take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we remember transnational freedom fighter Sardar Singhji Rawaji Rana, who died on the 25th of May 1957. S.R. Rana was the founding member of the Paris Indian Society and the vice president of the Indian Home Rule Society.
Rana was born on 10th of April 1870 in Kathiawar, Gujarat. During high school, Rana studied in Ferguson College, Pune, where he came in contact with Lokmanya Tilak and Surendranath Banerjee. He got inspired to join the freedom movement as he volunteered at the Indian National Congress Conference in Pune in 1895. In London, while pursuing law, he came in contact with Shyamji Krishna Varma and Bhikaji Kama. He was instrumental in the establishment of India House in London.
In 1899, Rana left for Paris and came to associate with Indian nationalist politicians, including Lala Lajpat Rai, who is known to have visited Paris and stayed with Rana. In 1905, Rana became one of the founding members of the Indian Home Rule Society. Together with Munshir Shah Barjorji Godrej and Bhikaji Kama, he founded the Paris Indian Society that same year as an extension of the Indian Home Rule Society on the European continent. Rana announced 3 scholarships for Indian students, each worth 2,000 rupees, in memory of Maharana Pratap Chhatrapati Shivaji in the December 1905 issue of the Indian Sociologist.
Rana helped the Indian independence movement in several ways. He also helped Vinayak Damodar Savarkar to publish his banned book, The Indian War of Independence. He had also helped Savarkar in his Mahsai asylum case in the Permanent Court of Arbitration, The Hague, in 1910. Lala Lajpat Rai had written Unhappy India during his stay in his house for 5 years. He had helped Subhash Chandra Bose to address the audience on German radio. He had also helped in the establishment of Banaras Hindu University.
Rana developed close links with the French and Russian socialist movements, and along with Bhikaji Kama, attended the Second Socialist Congress at Stuttgart on 18th of August 1907, where the flag of Indian independence was presented by Kama. Rana was a regular contributor to Bande Mataram, published by Kama from Paris, and the Talwar, published from Berlin, which were then smuggled into India.
Due to his nationalist activities, Rana was expelled by the French government to Martinique in 1911. Rana underwent a lot of personal losses in his life as his son and wife died. Thereafter, he abstained from public life and returned to India after independence in 1948.
S. R. Rana died on the 25th of May 1957 in Veravel, Gujarat. He was awarded the Chevalier by the French government in 1951. His portraits are placed in the Gujarat Legislative Assembly and his place of death in Veravel.
We also remember Manipuri freedom fighter Kajao, alias Pukramba, a resident of Kangamong, Manipur, on 24th of March 1891. When British troops launched an attack on the Manipuri fort, Kajao killed the British political agent Grimwood. He was sentenced to death on the 19th of May 1891. Following his capture, Kajao was hanged on the 25th of May 1891 at the west gate of the fort. Kajao is remembered for sacrificing his life for the independent kingdom of Manipur. We salute the great martyr.
We also remember Manipuri freedom fighter Hirang Kogja, who fought against the British in Anglo-Manipur War in 1891. Kogja hailed from the village Hirang in Manipur. He died at the Kongjom battlefield on the 25th of May 1891 during the Anglo-Manipur War. We salute the great martyr.
और श्रोताओं, आप चलते हैं खेल के मैदान की ओर और जानते हैं वहां की हलचल। भारत की पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंग बैम रूंगफान को हरा दिया। इससे पहले सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की हान जुई को हराया था।
That's right. In archery, India bagged a gold and a silver medal at the World Cup Stage 2 at Yeosan in South Korea today. The Indian compound women's team comprising Jyoti Surekha Vennam, Parineet Kaur and Aditi Swami defeated Turkey's Hazel Burun, Aysa Bera Suzer and Begum Yuva in the final to win the gold. The Indian compound mixed team of Jyoti and Priyansh clinched the silver medal after losing to American pair of Olivia Dean and Soya Salian in the gold medal match.
और प्रमोद, अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्म दिवस। श्रोताओं, आज सबसे पहले हम याद कर रहे हैं
सुनील दत्त को याद करें। आज
सुनील दत्त को याद कर लेते हैं।
सुनील दत्त, उनका आपको पता असली नाम क्या था?
बलराज दत्त।
एब्सोल्युटली, वेरी गुड,
थैंक यू अगेन, आपने मुझे पास कर दिया।
करेक्ट। ही वॉज बॉर्न ऑन द 6th of June 1929 एंड ही डाइड ऑन द 25th of May 2005। वॉज एन इंडियन एक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड पॉलिटिशियन। दत्त वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री 1968 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। मेरे डैड इंडियन मूवीज नहीं देखते थे विनय, बट सुनील दत्त उनके लिए बहुत प्यारे थे। ही सेड ही वाज अ मैन हु वेंट थ्रू सो मच ऑफ ट्रबल इन हिज लाइफ बट ऑलवेज विद अ स्माइलिंग फेस एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन।
एंड ही आल्सो नोज एज फर्स्ट एंग्री यंग मैन ऑफ द इंडियन सिनेमा।
Really, I didn't know that. Acha, in Mother India.
Of course, yes.
Absolutely, absolutely. Dutt debuted in 1955 with the Hindi film Railway Platform. He rose to prominence with highly successful and acclaimed films such as Ek Hi Rasta, 1956, Mother India, 1957, and Sadhna, 1958, and went on to deliver many hugely popular and iconic films in a career that spanned 48 years. Dutt married his Mother India co-star Nargis in 1958, and together they had three children, including the actor Sanjay Dutt. In 1984, he joined the Indian National Congress Party and was elected to the Parliament of India for 5 terms from the constituency of Mumbai Northwest.
सुनील दत्त को फिल्मफेयर पुरस्कार और लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था।
एब्सोल्युटली, ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग मैनरिज्म एंड टू रियली डेयर टू टेक अप रिस्की एंड नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट्स इन हिज प्राइम ईयर्स सच एज मुझे जीने दो। यादें देखी आपने? यादें, यस, यू मस्ट वॉच इट इफ यू गेट द टाइम।
अच्छा, वो एक कमरे में बैठ के,
एक कमरे में बैठ के, ओनली वन एक्टर
वो देखिए,
बाकी सारा फ्लैशबैक में है।
वन एक्ट
प्ले, एब्सोल्युटली, या। And he's also noted as a serial talent spotter, giving major breaks to the then struggling actors like Amitabh Bachchan, Vinod Khanna, Ranjit and Shakti Kapoor in his home productions Reshma and Shera and Rocky respectively. One of the most successful actors of the 1960s and 70s, Dutt appeared in Box Office India's top actors list in 1966 and 1967. And Vinay, I don't know if you know it, but he got the Filmfare Actor, Best Actor Award for his role in the film Khandan. We have a song from that. Usko sun le.
Bilkul sunaiye.
Ji.
Badi der bhai Nandlala, teri raah tak bhijwala.
Badi der bhai Nandlala.
से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, कोई न जाए कुंज गलिन में। सावन का महीना पवन करे शोर, यार झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर।
Today is also the death anniversary of famous Indian film producer Ismail Merchant. He was born Ismail Noor Muhammad Abdul Rahman on the 25th of December 1936, but he died on the same day as Sunil Dutt, 25th of May 2005. He worked for many years in collaboration with Merchant Ivory Productions, which included film director and Merchant's longtime professional and domestic partner James Ivory, as well as screenwriter Ruth Pravar Jabwala. Merchant met American movie director James Ivory at a screening in New York's Ivory documentary The Sword and the Flute in 1959. In May 1961, Merchant and Ivory formed the film production company Merchant Ivory Productions.
और अब हम बात करेंगे मशहूर शायर दाग देहलवी की, जिनका नाम नवाब मिर्जा खान था। उन्हें उर्दू जगत में एक मशहूर शायर के रूप में ऊंची जगह प्राप्त है। उनका अधिकांश समय दिल्ली में बीता और यही कारण है उनकी शायरी में दिल्ली की तहजीब नजर आती है। दाग दहलवी की शायरी इश्क और मोहब्बत की सच्ची तस्वीर पेश करती थी। उन्होंने आखिर में लिखा था कि क्या मिला हमको जिंदगी के सिवा, वो भी दुश्वार ना तमाम खराब।
Today is now we'll move to birth anniversaries. Vinay,
yes,
yes. Today is of course the birthday of a famous Indian, South Indian, if I may use the word, playback singer, composer, music producer, television presenter, and film producer. And his name is Malabar Gopal Nair Srikumar, M.G. Srikumar. And he was born on the 25th of May 1957, and he has sung more than 35,000 songs in various Indian languages, including Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada, Hindi, and Sanskrit. He owns a music company named KMJ Musics and the Saregama School of Music in Trivandrum. He's won several awards, including 2 National Film Awards, 3 Kerala State Film Awards, and 5 Filmfare Awards. His career as a singer spans over 44 years. The Malayalam movie Chitram, which was made in 1988, directed by Priyadarshan, starring Mohanlal, was the first where Srikumar sang all the songs. And it's become a big hit, and we have a song from that movie. Let's listen to it.
Nagmo o muganale neena jali telisi, nagmo o muganale neena jali telisi, nanbo varada
sabar. और श्रोताओ, हम बात करेंगे हॉकी के मशहूर खिलाड़ी बलबीर सिंह की। बलबीर सिंह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में जाने जाते थे। बलबीर सिंह का नाम आज भी शीर्ष खिलाड़ियों में लिया जाता है। वो अपने खेलने के दिनों से ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में समझे जाते रहे। उन्होंने 3 बार ओलंपिक में भारतीय हॉकी की टीम में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और तीनों बार उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, 1948, 1952 और 1956। वो पंजाब सरकार में खेलों के डायरेक्टर भी रहे और मोगा में उनके नाम से एक इंडोर स्टेडियम भी है। हेलसिंकी में बलबीर सिंह ने भारतीय टीम की कप्तानी की और इन्हीं उपलब्धियों के चलते उन्हें 1957 में पद्मश्री से नवाजा गया।
Today is also the birthday of Uttam Singh, Indian music director and a well-known violinist. He also worked as a music arranger, programmer and recordist for many Bollywood films. He worked as a music assistant for Ilayaraja in numerous Tamil films before establishing himself as an independent composer. Later on, he became the main violinist for S.D. Burman's son, Rahul Dev Burman. He won several awards for Nanak Shah Fakir. We have a song from that film.
और श्रोताओ, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है, अब हम आपसे विदा लेते हैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की। अगर आप इसे दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी हमारे कार्यक्रम को 24 घंटे सुन सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।